मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। फिलहाल हम लोग भारतीय दार्शनिक प्रणालियों के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जिन दर्शन प्रणालियों को लेकर के चल रहा हूं, उनका संबंध पूरी तरह से प्राचीनतम दार्शनिक प्रणालियों से ही है। फिलहाल हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि किस तरीके से एक समय ऐसा आया जब अवैदिक चिंतन, आप कह लीजिए, या वैदिक विरोधी चिंतन कहना ज्यादा सही होगा, भारत में होने लगा और उपनिषद उसके शिखर पर स्थित हैं। जब मैं कह रहा हूं उपनिषद शिखर पर स्थित हैं, तो उपनिषदों का तौर तरीका क्या था, इसके बारे में मैंने पिछली बार थोड़ी सी चर्चा की थी। और मुझे लगता है कि यहाँ यह भी मुझे बताना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपकी आलोचनात्मक दृष्टि बढ़ेगी, वो ये कि जब हमारे यहाँ इस तरह के चिंतन होने लगे, जिसे आप भौतिकवादी चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन आप कह सकते हैं, तो डेफिनेटली इसने विचारों की नई तरह की शाखाएं या धाराओं की भी शुरुआत की। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र पर बहुत विचार किया गया, चिकित्सा शास्त्र पर बहुत बातें हुई, है ना, सुश्रुत, चरक, संहिताएं इनकी आई और इन्होंने नए नए तौर तरीके चिकित्सा के बताए। गणित के बारे में बहुत ज्यादा बातें की गई, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक हमारे देश में हुए। अब सवाल यह है कि ये जितने भी साइंस के सब्जेक्ट हैं, देखिए जो मैं भी बात कर रहा हूं, गणित हो, चिकित्सा हो, और यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र भी, वो एक तरीके से फिजिक्स का पार्ट है, जिसमें आप ब्रह्मांड में जो सितारे हैं, जो तारे हैं, उनकी गणना कर रहे हैं, उनके परस्पर संबंधों को देख रहे हैं और उनका क्या प्रभाव मानवीय जीवन और इस पृथ्वी नामक ग्रह पर पड़ता है, इनके बारे में आप लिख रहे हैं, बता रहे हैं। तो जब हम इन विषयों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन विषयों का संबंध सीधे सीधे साइंस से है, मैथ्स से है। मैथ्स अपने आप में एक शाखा बन करके हमारे यहां उभरी। आगे चल करके आप देखेंगे कि वेदांग की फिर जो छह शाखाएं हमें देखने को मिलती हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष विश्व में शामिल है कल्प, इन सब के लिए आप यूं कह लीजिए कि ये जो भौतिकवादी चिंतन है, इसने प्रवेश द्वार खोल दिया और ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भारत की खोज पुस्तक लिखी है, उसके आरंभ में उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही है। उन्होंने लिखा कि अगर भारत की जो विचार पद्धति थी वो पूरी तरह से आध्यात्मिक ही होती, अलौकिक जीवन के बारे में बात कर रही होती, मैं अपने शब्दों में उनके भाव बता रहा हूं, हम केवल रहस्य की ही बात कर रहे होते, तो हमें ये बात बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ लेनी चाहिए कि कोई भी संस्कृति, ये मैं अब उन्हीं के शब्द रख रहा हूं, कि कोई भी संस्कृति जो मूलतः पारलौकिक होती है, वह सहस्त्रों वर्षों तक जीवित नहीं रह सकती थी। हमें इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और व्यावहारिक स्तर पर भी मैं आप सबसे, जो आप मेरे स्टूडेंट होने के नाते, कहना चाहूंगा कि खास कर कहा जाता है ना कि भारत आत्मवादी है, भारतीय विचार पद्धति पूरी तरह से पारलौकिक है, इसमें जीवन की वास्तविकताओं को नकारा गया है, वैज्ञानिक चिंतन नहीं मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ चिंतन पद्धति के रूप में बकायदे तार्किक चिंतन पद्धति रही है और बहुत मजबूती के साथ रही है, बहुत लंबे समय तक रही है, उसकी जड़ें बहुत गहरी रही हैं। और भारतीय समाज में जो आपको प्रगतिवादी तत्व दिखाई दे रहे हैं, वो सच पूछिए तो इसी विचार पद्धतियों की देन है। तो सच पूछिए, वे सब इन्हीं विचार पद्धतियों की देन है, यानी कि भारतीय समाज को खोलने का, उसे उदार बनाने का, उसे बहुसांस्कृतिक, बहुरंगीय बनाने का जो काम किया है, वह इसी भौतिकवादी विचारधारा पद्धति ने किया है। और जब आप इस तरह की पद्धति को लेकर के चलते हैं, तो जो एक सबसे बड़ी क्रांति घटित होती है समाज में दोस्तों, वह क्रांति घटित होती है ह्यूमेनिज्म की, मानवतावाद की। क्योंकि अब आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जिसके लिए भी बात कर रहे हैं, उसके केंद्र में कौन है? उसके केंद्र में मनुष्य है, उसके केंद्र में मनुष्य का हित है। और आज देखिए कि आप चाहे पूरे के पूरे भारतीय इतिहास और संस्कृति की धाराओं को देख लीजिए, चाहे आप हमारे संविधान को देख लीजिए, उसमें आपको बकायदे मानवतावाद कूट कूट कर भरी हुई मिलेगी, और यहां तक कि आप रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं उसी मानवतावाद को, कि किस तरीके से हम लगातार हिंसा का विरोध कर रहे हैं, अहिंसा के पक्ष में हैं, झगड़े को बातचीत के जरिए सुलझा लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, और जहां भी अवसर मिल रहा है हम विदेशी नागरिकों को अपने नागरिकों के साथ साथ बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, और भारत ने कोविड के दौरान भी इसी तरह का कदम उठाया। तो यहां आपको सीधे सीधे मानवतावाद दिखाई देगा, और हमारे विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत है वो तो सारे के सारे सिद्धांत इस मानवतावाद की ही विस्तृत व्याख्या है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो श्रेय जाता है ये पूरा का पूरा श्रेय भौतिकवादी विचारधारा को जाता है, लेकिन यहां हमें यह भी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, तो फिर अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है, उसने हमारे समाज को रोका नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच पूछे तो उसने हमारे तर्क के साथ आध्यात्म का समन्वय करके सारी बातों को, सारी चीजों को, हमारे व्यवहार, हमारी प्रणालियों, हमारी परंपराओं को बहुत खूबसूरत और सर्वांग बना दिया, संपूर्ण बना दिया। और यह संपूर्णता ही वह शक्ति है जिसकी वजह से भारतीय दर्शन को कह लीजिए या भारतीय संस्कृति को कह लीजिए, बोलचाल की भाषा में भारतीय धर्म कह लीजिए, उसे सनातनता का रूप दे दिया। यानी कि शुरू से लेकर के और आज तक वह विचार पद्धति बिल्कुल चली आ रही है, गंगा नदी की तरह बहती चली आ रही है। इस बीच में बहुत से उठापटक हुए, दूसरी संस्कृतियां आई, वो इसमें मिल गई, दूसरे विचार पद्धतियां आई, बाहरी विदेशी आक्रमण भी हुए, लेकिन जो सनातनता है, जो भारतीयता की, याद रखिए मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ईसाई सिख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीयता की बात कर रहा हूं, कि भारतीयता की जो सनातनता है वो इसी वजह से बनी रह सकी कि आध्यात्मिक चेतना से शुरू हुई हमारी जीवन पद्धति बीच में आकर के भौतिकवादी चेतना के साथ मेल बैठाती है, और फिर इन दोनों के मिलने से जो एक अद्भुत चेतना पैदा होती है वो आगे बढ़ती है, और बीच बीच में इसमें बकायदे रिविजन्स होते रहते हैं, इनमें बदलाव आते रहते हैं, फिर चाहे शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत दर्शन क्यों ना हो, फिर हम विशिष्टवाद, विशिष्टाद्वैतवाद वगैरह देखते हैं, फिर हम भक्ति काल में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार उसमें रिफॉर्म होते रहते हैं, समय की मांग और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव होते रहते हैं, और यही इसकी सनातनता का सबसे प्रमुख कारण है। मित्रों, जानबूझ करके मैंने यहाँ इन बातों का उल्लेख आपके सामने किया है, क्योंकि इस तरह की समझ ही आपको मुख्य परीक्षा में उत्तर देने के लायक बनाती है। साथ ही साथ जहाँ प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, अगर उसमें दर्शन को लेकर के कोई प्रश्न पूछ लिया गया है तो आपकी क्षमता को विकसित करती है, और साथ ही साथ निबंध लिखने के आपको योग्य बनाती है। अदरवाइज देखिए, सीधे सीधे दर्शन पद्धति पर तो निबंध लिखने को नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ करके यहाँ भी संस्कृति, परंपरा और समाज की बात की है, क्योंकि यह आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। दोस्तों, मैं थोड़ी सी जानकारी, हालांकि ये जानकारी बहुत आसान सी है, लेकिन देना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए जिनके आधार पर हम दर्शनों को समझते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, वो किस तरह के थे, यानी कि उनके नाम क्या थे, क्योंकि ये अलग अलग नाम आपको समय समय पर पढ़ने को मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में भी अगर आपको थोड़ी सी जानकारी रहेगी तो लिखने में आप गड़बड़ियां नहीं करेंगे। सामान्य तौर पर बोलचाल के शब्दावलियों में या जब कथा सुनाई जाती है तो बहुत कुछ इनको एक जैसा मान लिया जाता है, जबकि सच यह है कि एक जैसे नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि इनके बारे में थोड़ी सी बातें समझ लेना आपके लिए बेहतर होगा। उपनिषदों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। भारत में यह माना जाता है कि लगभग 108 उपनिषद लिखे गए, जिसमें से 10 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और अलग अलग रचनाओं में, किताबों में, यहां तक कि अखबारों के लेख में भी आजकल आपको इन उपनिषदों के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। तो एक मिनट भी नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि इन 10 उपनिषदों के नाम तो मुझे बता ही देने चाहिए, ताकि आपके जेहन में ये नाम अटके रहें, इतना ही पर्याप्त होगा। दोस्तों, ये उपनिषद हैं: ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जानते हैं आप, सत्यमेव जयते, इसी से लिया गया, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ भी लिया जाता है, कौशिकोपनिषद, तैत्रियोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 महत्वपूर्ण उपनिषद है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने नाम बता दिया है, आपने सुन लिया है, इतना ही पर्याप्त है। जब भी आपको कभी पढ़ने को मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है ना, अदरवाइज तो फिर 108 है। फिर आपको जो दूसरे तरह के ग्रंथ मिलेंगे वे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण इस समय तक प्रोज आ चुका था, प्रोज में लिखे गए हैं, बकायदे ये गद्य ग्रंथ हैं। और नाम ही देखिए ब्राह्मण, तो यानी इसमें यज्ञ कर्म कांड और इन सब चीजों की बातें ही कही गई होंगी। कर्मकांडीय सूत्र बताए गए हैं, वेदों की बातें लाई गई हैं और खासकर यज्ञ से संबंधित विचारों को बहुत ज्यादा इसमें तरजीह दी गई है। और चूंकि वेदों का संबंध इससे रहा है, इससे यानी कि इस विचारधारा से, तो स्वाभाविक है कि ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत भी बकायदे चारों वेदों की व्याख्या, इनकी चर्चा, इनके बताए हुए सूत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये ब्राह्मण हैं, इन्हें आप बहुत ही प्रगतिशील ग्रंथ नहीं कह सकते। फिर एक खूबसूरत शब्द हमें मिलता है आरण्यक। आरण्यक, अरण्य, देखिए अरण्य, अरण्य मतलब जंगल। और कैसा जंगल? अरण्य, जहां आप आवाज देते रहे तो वह आवाज किसी को सुनाई ही न पड़े, इतना सुनसान जंगल, इतना वीरान जंगल। तो ऐसा जंगल, यानी कि जहां लोग भी रह रहे हैं, पशु भी पाल रहे हैं, लेकिन जंगल है नहीं, आरण्य। ऐसे जंगल में बैठकर अगर कुछ सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा और लिखा जाएगा इतने एकांत और साधना के रूप में, तो आप खुद बताइए कि लेखन किस तरीके का होगा, वह विचार किस तरीके की होगी। तो दोस्तों यह है आरण्यक। इसमें बाकायदे जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही फिलोसफिकल हैं और बहुत ही मिस्ट्री से भरी हुई है, रहस्य से भरी हुई बातें हैं। अब आप अकेले में सोच करके देखिए कि ऐसी चेतना, ऐसा मस्तिष्क कितनी गहराई तक उतर पाएगा, कितने नीचे तक जाएगा। तो रहस्य युक्त बातें हैं, इन्हें आप बिल्कुल उपनिषद के आसपास मान सकते हैं। ये भी बकायदे बलि और कर्मकांड, साजी यज्ञ जो है इनका विरोध करते हैं और मनुष्य में जो नैतिकता होनी चाहिए, जो सद्गुण होनी चाहिए, उन पर जोर देते हैं। इन्हें कहा गया आरण्यक। इसके बाद हमारे पास जो प्राचीन ग्रंथ है वो है स्मृति। स्मृति मतलब मेमोरीज, हालांकि यहां स्मृति का मतलब मेमोरीज से नहीं है, मेमोरी से इकट्ठे नहीं किए गए, जैसे मनुस्मृति। तो मनुस्मृति बेसिकली क्या है? मनु एक शासक थे, तो मनु ने अपने राज्य व्यवस्था के लिए जो एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, बस वही मनुस्मृति है। तो एक समय ऐसा आया कि जब कोई भी इस तरह का व्यक्ति अपने समय में कुछ इस तरह की रचना करता था तो उसे वो स्मृति का नाम दे देता था। तो ये बेसिकली खासकर हमारे वेदों में जो बातें कही गई हैं उनको अपने ढंग से, अपने अंदाज से कहने की एक कोशिश भर है। तो इस तरह से आपको ढेर सारी स्मृतियां मिलेगी। पुराण का नाम तो बहुत ही प्रचलित है और आप जानते भी हैं और इसके बारे में खूब सारी बातें भी करते होंगे। तो बेसिकली जो पुराण है, आप यूं कह लीजिए कि ये कथाओं का संकलन है। इसमें खूब सारी दंत कथाएं हैं, कर्म कांड हैं, कहानी किस्से हैं, परंपराएं हैं, नैतिक मूल्य हैं। भागवत पुराण, भागवत कथाएं तो होती हैं, अगर आपके कानों में कभी आवाज पड़ी हो तो देखिए उसमें कहानी किस्से बताए जाते हैं। जितने हमारे संस्कृति के ज्यादातर कहानी किस्से हैं वो पुराणों के अंतर्गत ही हैं। ये पुराण हो गए। इसके बाद सूत्र आपको ग्रंथ पर सुनने को मिलेंगे। उत्तर वैदिक काल में इनकी रचना हुई थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। श्रौत सूत्र, खासकर श्रौत सूत्र में जो हमारे वैदिक अनुष्ठान होते हैं उनकी व्याख्या की गई है। गृह सूत्र, यानी कि जो परिवार के लोग हैं वो किस किस तरह के, उन्हें काम करने चाहिए, उनके दायित्व क्या है, इनके बारे में बताया गया है। धर्म सूत्र, तो जो बेसिकली उस समय जो सामाजिक व्यवस्था होती थी, राजनीतिक व्यवस्था, उनके लिए जो नियम कानून बनाए जाते थे, इनफैक्ट वो धर्म ही कहलाते थे। तो धर्म सूत्र में बकायदे सामाजिक कानून और कर्तव्यों की ही बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी कि क्या हमारे सामाजिक दायित्व हैं, क्या हमारे कर्तव्य होते हैं, तो वो धर्म सूत्र के अंतर्गत है। इसके बाद हमारे यहाँ चार उपवेद मिलते हैं। उपवेद वेदों के से थोड़ा सा छोटा नीचे, लेकिन उसके आसपास उपवेद चार हैं। आयुर्वेद को उपवेद माना गया है, जिसमें औषधियों का वर्णन है, चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। धनुर्वेद, इसमें युद्ध कला का वर्णन है, धनुष धनुर्वेद, फिर गंधर्व वेद है, गंधर्व जो नृत्य के देव माने जाते हैं, तो यहाँ नृत्य और संगीत का वर्णन है गंधर्व वेद में, और फिर है शिल्प वेद जिसमें कला और साहित्य का वर्णन है। सोच करके देखिए कि किस समय में हमारे पूर्वज किस तरह की बातों पर विचार कर रहे हैं और उन पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, और केवल ग्रंथ ही नहीं लिखे जा रहे हैं बल्कि उन्हें इतनी बड़ी सामाजिक और बौद्धिक मान्यताएं प्रदान की जा रही कि बात तो युद्ध कला पर की जा रही है लेकिन उसे वेदों के अनुकूल ठहराया जा रहा है, बात तो चिकित्सा विज्ञान की जा रही है लेकिन उसे वेदों के पैरेलल ठहराया जा रहा है। कल्पना करके देखिए शिक्षा साहित्य कला और संस्कृति को क्या भारतीय चेतना ने स्थान दिया है, इससे यह स्पष्ट होता है। और इसके बाद आखिरी में है दोस्तों वेदांग, इन पर वेदों का सीधा सीधा प्रभाव है और खासकर वेदांगों की रचना इसलिए की गई थी ताकि जो हमारे वेद हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सके। और वेदांगों के 6 अंग हैं जिनकी चर्चा मैंने शुरू में की थी, शिक्षा जिसमें उच्चारण का वर्णन किया गया है, व्याकरण भाषा के जो व्याकरण संबंधी नियम है उनका उल्लेख मिलता है, निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, सोच करके देखिए उस समय का शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, और चूंकि ये तो मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। छंद जो वाक्य जो बनाए जा रहे हैं, कितने शब्द हैं और इसमें कितने वाक्य हैं और क्या इसकी प्रणाली होती है, उनके बकायदे वाक्यों के स्वरूप पर विचार किया गया है, उसके मापदंड पर, उसकी लंबाई पर, उसकी मात्राओं पर। ज्योतिष आप जानते ही हैं, और इसके बाद कल्प कर्मकांड का इसके तहत वर्णन किया गया है। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। तो दोस्तों ये प्राचीन साहित्य के बारे में मैंने आपको बहुत ही थोड़ी सी जानकारी दी है ताकि ये नाम आपके दिमाग में रहें और आप इनके अंतर को थोड़ा सा समझ सकें। तो दोस्तों आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड की जा रही है, ईमेल लिखने वाले मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आप सबसे आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।